देखते तो सोचे कि अरे यही वृंदावन है, यहीं पर कृष्ण मिलेंगे। तो भौरे को निषेध कर यहां ऐसे उठ करके बैठ गई। गोपियों ने संभाल करके बैठाया, जो अभी तक क्षीण अभी उनके श्वास प्रश्वास नहीं, और वो बैठ गई और कह अरे मधु पागल अपवित्र मधुपान करके तू यहां आया, तुमको कैसे मान भंग करना चाहिए वो सीख करके नहीं आया, तुम्हारे गुल्फों पर क्या है ये कुमकुम कहां से लगाया, भाव नेत्र से देख रही है ये कृष्ण किसी अपने कुमारी से मिले और उनके वैजयंती माला में उसका कुमकुम लग गया अंगों का, और उसमें कृष्ण के अंगों का सुगंध और वही उसके गुंफों पर लग गया, और वो लेकर के मनाने के लिए हमको आया। अरे कहां से तू आया पागल, हमारे पैरों को मत छू, फटाफट हमको अपवित्र मत करो, तुम वहां से आया यहां पर इसलिए मनाना चाहिए, तुमको पता नहीं। देखो यदि जदवंशी बड़े चतुर हैं, वहां की सभा से आया है और उसके पास से उसको देखो तुम्हारा प्रभु जैसा है तुम भी वैसा दू, बड़ी उसकी लज्जा होगी, डांट फटकार पड़ेगी। यदि व्यक्त हो गया किसी कारण से जो तुम उनकी पत्नियों से ये प्रेम करता है तो फिर लेना का देना उसको पड़ जाएगा, और तुम वही चिन्ह लेकर के हमारे पास में आए, इस तरह के प्रेम से भरे हुए, कभी बिगड़ रही हैं, कभी क्रोधित हो रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, तरह तरह के भाव उनके हृदय में आ रहे हैं। इतना बजा 12:30 तो बजी गया। तो इस तरह से उन्होंने जितने श्लोक सुनाए उलाहना दिया, कहे इस काले को हम जानते हैं, उससे सुल्लह नमा कभी संभव नहीं, और वो भन भन करता हुआ जा रहा है, मैं समझती हूँ तुमका राज्य हमारे प्रभु ऐसे नहीं है भाई, हमारे प्रभु तुम जैसा कह रहे नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है, उन्होंने भेजा है हमें जो उनसे मित्रता कराओ, उनका मान भंग करके आओ, इसलिए आया। कैसे हो सकता है, अरे जितने काले हैं काले नाम के सभी वैसे ही हैं, धोत चोर है। एक त्रेता युग में था श्यामला सा, अपने केस बांध करके साधु बना और अपने अस्त्र शस्त्र भी ले लिए बाण धनुष, और अपने साथ में बैरागी बन के जा रहा है वन में, तो स्त्री की क्या जरूरत, अपनी स्त्री को भी ले लिया, मैं स्त्री को जीत करना, इंद्रियों का जीत कर दमन करने वाला, और साथ में पत्नी को भी ले लिया, और उसके पास में एक लड़की आई उसको देख करके प्रणय की भीख मांगने की, मैं तुमसे शादी करना चाहता, तो उसका नाक और कान काट लिया, शूर्पणखा काटा, बतलाओ तो अपनी स्त्री के वशीभूत होकर के और उसका नाक कान काट लेना, ये कालों के अतिरिक्त दूसरे का काम नहीं हो सकता है। अरे कह देता ये तुम हम शादी नहीं करेंगे, तुम दूसरे से शादी कर लो, नाक कान की उसलिए, इस जन्म में कोई उससे हमसे क्या है, अच्छा तो हाँ जितने काले हैं, राम भी वैसा और एक और काला था बामन, उनका सर्वस्व लेकर के बलि महाराज के उनको बांध करके गिरा दिया। ऐसे कालों से हमें कोई प्रयोजन नहीं, इस तरह से भाव में विभोर, फिर सोचें अरे उसका दूत आया हमारे लिए आया, इसको प्यार से बोलना चाहिए, अभी मधुपुर अभी पति मधुपुर जा आर्य पुत्र आज, अरे क्या आर्य हमारे हमारे वहीं पर हैं, आते हैं तो आ रहे हैं क्या, एकदम ऐसे मालूम है ये आ ही रहे हैं कृष्ण, और ब्रह में तड़पने लगी क्या आ रहे हैं, और ऐसे कहते कहते उनका स्मरण करते हुए एकदम गिर गई, व्याकुल होकर के हा हा करती हुई। उद्धव जी ने देखा, देख करके ये ऐसा प्रेम तो हमने देखा नहीं, अंत में प्रार्थना की आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावन किमक कुल, वंदे नंद ब्रजेष्ठीनाम पादरेणुम अभिक्षसा, गोपियों की जो चरण धूलि है उसकी मैं वंदना करता हूँ, दूर से वंदना करता हूँ। मैं चरणों की धूल की वंदना भी करने योग्य नहीं हूँ, उनकी तो बात क्या, धूलि की बहुत दूर से जिस दिशा में है उनको मैं वंदना कर, एक धूलि की वंदना तो अधिक नहीं। ऐसा कह करके प्रेम में मस्त हो गए। सोचा जी कृष्ण से जाकर के हम कहेंगे, उलाहना देंगे, जल्दी से चल, इत्यादि। बहुत प्रसंग लंबा है, मैंने थोड़ा सा ये सूत्र दिया, यदि भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे देश के बाद में हम समझाएंगे। आज आरती का भी समय हो गया है, जल्दी से आरती कराइए और पंडित जी दो साफ शब्द कहेंगे, आप लोग सुन लें।
दुनिया भर की
वो सब उनको भूल गए, दोबारा मुझसे आए ही नहीं, तो वो वृंदावन क्यों नहीं आए दोबारा।
बहुत ही गुड़ रस है, ये शिष्यों को बतलाया जाता है, आप शिष्य हो जाएंगे या हमारे पास में कुछ दिन रहेंगे, ये गुड़ रहस्य मैं आपको खुद दे दूंगा। Rhyme is everywhere in my body, everywhere. So I should remember him, giving up all the jobs, worldly jobs and things. But we cannot give up worldly jobs. We'll have to take some breath. श्वास लेना होगा, नहीं तो मर जाएंगे। कुछ भोजन भी लेना है, नहीं तो भी मर जाएंगे। किंतु इस चीज को रियलाइज करना है कि राम हमारे मन में है, हृदय में है, सब जगह है, इसलिए हम जीवित हैं, नहीं तो मर जाते। तुम चाहे सोचो मत सोचो, वो है। तुम्हारे शरीर में पानी है कि नहीं, है ना? तुम्हारे शरीर में हवा है कि नहीं, आग है, नहीं रहने से ये हजम नहीं होगा, कुकिंग होता है, बॉइलिंग होता है, ये सब कुछ। और जिस समय शरीर ठंडा हो जाएगा बस मर गई, जब तक प्राण है तब तक ये गर्मी है उसमें, तुम चाहो और ना चाहो वो जरूर रहेंगे। वैसे ही तुम चाहो और ना चाहे वो हैं, बस इसी को रियलाइज करना है, जय राम है या कृष्ण है, सर्वत्र हमारे अंदर में है। यदि जिस समय रियलाइज हो जाएगी, ये तुमको काम छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा इतनी जोर से एक्टिव हो जाएगी, काम करेगी, कृष्ण का स्मरण करेगी, उसे जगत को लाभ होगा। और ऐसे मालूम हो जाए शरीर कुछ नहीं कर रहा, उस समय तुम्हारे अंदर में प्रेम उछलेगा, उसकी लहर आएगी। और यदि जगत का कोई व्यक्ति उसको थोड़ा सा स्पर्श कर दिया, वो भी धन्य हो जाएगा। मीराबाई का नाम सुना है ना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, बस 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 बस, अब कुछ देर के लिए अब शांति कर लिया। हाँ, अब रो ले। मेरा भाई क्या कर रही? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, और अपने घर में बंद होकर के वीणा लेकर के गा रही है, तन्मय हो गई है, कृष्ण से रहा ना गया, वो बंसी की लेकर के वहां पर उपस्थित हो गए, बंसी बजाने लगे, मीरा और जोर से नृत्य कर। उसके पति राणा, उस समय वहां का मालिक राज्य का, ये किसके किसके साथ में जने रहती है, गाती है, और हमारे राज्य परिवार की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया, आज इसको देखते हैं और उसको आज मारेंगे हम। ऐसा सोच करके दरवाजा जल्दी से खोलो, किसके साथ में नाच रही है, कौन है देखे। उनको तो होश नहीं है, दरवाजा तोड़ दिया, लोगों से तोड़वाया, भीतर देखा तो अकेले मस्त होकर के गा रही है बीना लेकर के। कहे तुम्हारे साथ में जो आदमी था जो गा रहा था वो कहाँ गया? थोड़ी देर के बाद उनको होश हुआ, क्या कह रहे हो? तो तुम्हारे साथ में जिस आदमी के साथ में कहाँ छिपा रखा है बतलाओ तो, बिस्तरे में, इधर में, खाट के, पलंग के नीचे, इधर उधर खोजा, कहीं नहीं मिला। कहे आपको नहीं मिल रहा? अच्छा, बस ऐसे देखो, देखा था कोने में ऐसे ही खड़ा है बंसी लेकर के, अद्भुत रूप, देखते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। हाथ हटा दिया, फिर दृश्य गायब। राणा को बोली कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, बस घर छोड़ दिया। राणा उसके चरणों में गिरते गिरते हार गया, मनाते मनाते बस पैदल ही वृंदावन के लिए चल दी। बहुत कुछ मनाया नहीं, फिर वृंदावन में आई, वहां से जाने के बाद में द्वारका गई और ठाकुर जी की मूर्ति में प्रवेश कर गई, फिर निकली नहीं। उनका जीवन धन्य, उनका लोग जस अभी तक गाते हैं, उनके पद आज भारतवर्ष में सभी सब जगह लोग गाते हैं। अखियां हर दर्शन को प्यासी कैसे कैसे पद है, उनका जीवन सुखमय हो जाता। हम सब संसार का काम को छोड़ दिया है ना, बाल बच्चों का पालन पोषण तो नहीं करता, किंतु सबसे अधिक करता हूं। यदि अपने माँ बाप की कोई सेवा कर रहा है तो सबसे अधिक मैं करता हूँ। कैसे कैसे करता हूँ बतलाओ तो, कैसे करता हूँ? आत्मा के द्वारा भगवान उन पर कृपा कर, अरे उसका ये चिंतन करता है बस, जर कृपा कर। एक बेटा माता पिता की क्या सेवा करेगा। एक बार मैं जा रहा था कलकत्ते, तो बहुत से अप टू डेट लड़के जो नए नए सूट बूट में रहेगा और काम करने वाले अंग्रेजी जानने वाले, वो सब हमको चिढ़ाने के लिए पूछा, जैसे घर बार छोड़ करके यहाँ पर क्या घूम रहा है, माता पिता की सेवा करना तो कर्तव्य है। तो मैंने उनसे कहा जैसे, अच्छा ये बतलाओ तुम्हारे माता पिता तो हैं, तो हैं, तुम नौकरी करते हो ठीक है, क्या उनकी सेवा करता है, क्या सेवा करता है बतलाओ। तो रुपये उनको देते हैं, उनको कोई रोग हो जाएगा तो इस रुपये से ठीक हो जाएगा, तो कोई क्लेश हो जाए ठीक हो जाएगा, तो उनकी क्या सेवा करेगा। हम उनकी जो सेवा करते हैं माता पिता का, भगवान की सेवा करके भजन, उसलिए उनका कुल का कुल उद्धार हो जाएगा। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका थोड़ा सा कष्ट भी नहीं बांट सकते, मरते समय तुम पानी भी नहीं दे सकते, तुम तो अस्पताल में उनको दे दोगे, क्या सेवा करेगा। और वो मरेंगे ही जरूर, तो क्या सेवा किया। तो यदि हम लोग करते हैं तो भगवान का भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बस। इन्होंने एक प्रश्न लिखा है, पति पत्नी शब्दों का अर्थ क्या है। पौ मने होता है पालन करना, पोषण करना, और तो मने होता है ती जो है त्राण करना, रक्षा करना। जो अपनी स्त्री के सब प्रकार से पालन पोषण कर सकता है और उसकी सब विपत्तियों से रक्षा कर सकता है, विशेष करके मृत्यु से रक्षा कर सकता है, ये तो यथार्थ है पति का, समझते हैं। तो ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी पति की रक्षा कर सकता है, पालन कर सकता है कोई। अभी एक महिला आई थी, रो रही थी, हमारे पति मर गए। यदि खुद ही मर गए तो अपने पति की क्या, अपनी पत्नी की क्या सेवा करेंगे और क्या उनकी मदद करेंगे, क्या उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए यथार्थ अर्थ में पति कृष्ण है और व्यवहारिक अर्थ में ये है। अभी भी भारतवर्ष में कुछ जगहों में ऐसा है या और कहीं भी रेयर है, जो यथार्थ रूप में अपनी पत्नी कुछ ही नहीं करने पर उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते, तभी मृत्यु से तो रक्षा नहीं कर सकते, रोग को आगे नहीं रक्षा। किंतु पति का यथार्थ ये तात्पर्य है। रुक्मिणी जी ने ये बात कही थी, आपसे विवाह हो न हो आप ही हमारे पति हैं, हमने पति के रूप में आपको वर्ण किया। संसारिक पति अपने पत्नी का की रक्षा नहीं कर सकता, न रोगों से, न प्रॉब्लम से, न किसी चीज से। इसलिए यथार्थ पति का तात्पर्य है जो अपनी पत्नी को, जिसको अंगीकार किया है, हाथ ग्रहण किया है, उसकी रक्षा करे, पालन पोषण करे, उसकी समस्त मनोभावनाओं को समझ करके प्रीतिशय रहे। और पत्नी, पत्नी मैंने क्या, जो अपने पति की सेवा करती है, उसके मन के अनुसार में चलती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करती, ये वितगति माने संस्कृतगत इसका अर्थ है, जो उसके अनुगत्य में लेकर के चलती है। किंतु पति को भी देखना चाहिए, उसकी मनोभावना को समझ करके चले, और तब दोनों पति और पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझ करके, उसकी भावनाओं को प्रीति पूर्वक समझ करके उसे आदर करें, अपना आधा अंग समझे पति, और पत्नी भी उनकी मनोभावना को समझ करके उसके अनुसार में चले दोनों मिलकर के। और दोनों का ये तात्पर्य है विवाह शादी का बाद में उनका प्रथम कर्तव्य है, जो दोनों मिलकर के संसार को तो देख रहे हैं, बाल बच्चों को भी देख रहे हैं, किंतु दोनों मिलकर के भगवान के तरफ में चलें, क्योंकि धर्म क्या कहा जाता है, एक तो धर्म पत्नी, स्त्री नहीं कहते हैं हमारे वहां, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी माने क्या, वह पत्नी जो पति के धर्म के मामले में सब प्रकार से सहाय्य करती है, और पति अपने पत्नी के धर्म के मामले में सब प्रकार से सहायता करता है, ये तो है परस्पर व्यवहार। वो समझे कि हमारा आधा अंग है, और वो भी आधा, उसे कुछ छिपाए नहीं पति, पति ये न समझे कि मैं उसका कंट्रोलर हूँ, उसका भाग विधाता हूँ, ऐसा नहीं। देखिए राम ने सीता जी को कितना सम्मान दिया है, कृष्ण ने गोपियों को कितना सम्मान दिया है, हमारे पांचों पांडव लोग पांचों होकर के द्रौपदी को कितना सम्मान दिया है। द्रौपदी जी उनसे पहले उठती, उनकी सारी सेवा करती, और उनके कपड़े लत्ते पानी सब कुछ रख देती, और क्या दान पुण्य करेंगे वो सब कर देती, और राज्य का जितने कर्मचारी उनका वेतन अपने हाथों से देती, और सब व्यवस्था वो करती थी, आप लोग अनुमान नहीं कर सकते। बिना उसके आदेश से पांचों पांडव लोग कुछ एक तिनका भी नहीं हिला सकते थे, और इतने बलवान और ये सब होते हुए भी द्रौपदी सबको कंट्रोल करती थी, और द्रौपदी उनकी इच्छा के अतिरिक्त तो कुछ करती ही नहीं थी, और दोनों मिलकर के कृष्ण की सेवा करते थे, कृष्ण दोनों के वशीभूत। कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी कहते थे, ऐसे ही पति और पत्नी मिलकर के चले और कृष्ण की सेवा करते थे, ये तो हुआ धर्म पत्नी और धर्म पति। और यदि अपने भोगों के लिए ही, अपने सुखों के लिए उनका संबंध है, तो कुछ दिनों के बाद में टूट जाएगा, झगड़ा बखेड़ा होगा, और अंत में बच्चे खराब हो जाएंगे। देखें ये तो रोज झगड़ते हैं, शिक्षा नहीं ले। इसलिए ये समझ करके पति पत्नी को और पत्नी पति को सम्मान देते हुए उचित रूप में धर्म अपना करें, कृष्ण के तरफ में बढ़ें, बच्चों को भी लालन पालन उसी रूप में करें, तब कलह भी नहीं होगा और बच्चे भी सीखेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आप अपना काम भी करेंगे और सबसे प्रेम से रहेंगे। यदि सब कुछ करते हुए भी परस्पर प्रेम और सब कुछ है, भगवान के साथ में संबंध नहीं है, तो वो बेकार का कहा गया है। जो पति अपनी पत्नी को धर्म के तरफ में न ले जाए, जो पत्नी अपने पति के धर्म के मामले में सहायता न करे भगवत भक्ति में, जो बेटा पिता को भगवान की भक्ति में सहायता न करे, और जो पिता पुत्र को भगवान की भक्ति में न रुचि कर लगा दे, तो ये सब बेकार का है। मैया का पुत्र उत्पन्न करना बेकार है यदि अपने बेटे को भगवान की भक्ति की तरफ में नहीं ले गए। इसी तरह से समस्त धर्म सबके अंत में ये भगवत भक्ति का रखा जाए, तब जीवन सुखी हो सकता। आप ठीक हैं, अपने मार्ग पर ठीक चलेंगे। हम ईसाई नहीं हैं, जैन नहीं है, हिंदू नहीं है, हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, हम क्या है? गोपी भर्तु पद कमल और दास दासान दास। हम गोपियों के जो भर्तु कृष्ण हैं, उनके प्राणनाथ हैं, उनके दासों के अनुदास हैं, इसी का नाम वैष्णव है। अभी हम ब्राह्मण क्षत्रिय क्रिश्चियन ईसाई जैन या ये हैं, दो दिन के लिए बस, इसके बाद में सब बदल जाएगा, इसलिए आप ठीक चल रहे हैं। कृष्ण ही हमारे शरण हैं और हरे कृष्ण, ये बस दो मंत्रों का आश्रय लेकर के चलेंगे। ऊपर से अपने को कोई जैन माने, हिंदू माने, क्रिश्चियन माने, कोई भी बात नहीं, अपना मानते हैं। अधिक कंट्रोल किसी को नहीं करना चाहिए।
एक एक भगवान का नाम सबको तार देता है, बड़े बड़े दुराचारी करे हैं, लेकिन ना इतना जाप करते रहते हैं, कोई अपने दुराचार को दूर नहीं कर पा रहा। तो नाम की महिमा का ये तारतम्य है, पूछा जाता है,
इसलिए गीता में इसका उत्तर दिया गया और अजामिल उपाख्यान में भी इसका उत्तर दिया गया। अजामिल ने अपने पहले बेटे का, अंतिम बेटे का नाम नारायण रखा। जिस दिन नारायण नाम रखा उसके सारे पातक जल गए, किंतु फिर भी शराब पीता था, दुराचार करता था, डकैती करता था, लूट माट करता था। हमारे टीकाकारों ने उसको ये बतलाया कि उसके ये सारे जो कर्म थे वो कैसे हैं, जली हुई रस्सी का ऐंठन है। रस्सी ऐंठन मैंने जली लकड़ी, वो जल गई ना, रस्सी जल गई,
जो बल होते हैं
वो वैसे ही लगे हुए हैं, किंतु उसको छुओ तो क्या होगा, रख रख उसका ऐंठन, वो उसमें अब कुछ रह नहीं गया है, देखने के लिए है। इसलिए उसके जो कुकर्म देख रहे हो वो ऐसे हैं जैसे अब उसका कोई क्रिया नहीं है, बांध नहीं सकते। अब एक और ले लो उदाहरण, आप कार से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं ना, या साइकिल से जा रहे हैं, या मोटर कार से जा रहे हैं, फोर्स में उसको किया और इसके बाद में छोड़ दो थोड़ा देर, आप उसमें स्टेयरिंग इत्यादि मत चलाओ, किंतु बंद भी मत करो, और गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी,
थोड़ी बहुत,
कितनी दूर,
500 फीट 200 फीट
जाएगी, तो वो कैसे गई, आपने तो चलाया नहीं, चली ना। कभी कभी रेलगाड़ियों को देखते हैं कि छोड़ देता है तो एक माइल दो माइल तक ऐसे ही चली जाती है, वो कौन है, कौन? उसका एक थप्पड़ जड़ दो हाँ ठीक हो जाएगा, तो वो चली जाती। तो ये क्यों जाती है, उसका तो बंद तो कर दिया आपने, किंतु फिर भी पहले का जो चल रहा था वो चल रहा है। ऐसे ही भगवान का जो नाम कर रहे हैं, कुछ ऊपर उठ गए हैं, मालूम पड़ता कि ये वैसा ही पाप कर रहा है, इसमें कोई भी शुद्धि नहीं कुछ, किंतु उसकी क्रिया आत्मा पर होती है, शरीर पर नहीं। शरीर तो वो चल रहा है, दम दे दिया गया है, घड़ी में वो दे दिया है
चाबी,
वो चल रही है, जब तक वो चाबी रहेगी तब तक चलेगी, अब कुछ नहीं करना। ऐसे चाबी अपने कर्मों का उसमें दे दिया है, वो कर्म के अनुसार में चलेगा, किंतु आत्मा निर्मल होकर के धीरे 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 आगे बढ़ रही है, तुमको इसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा। वो अजामिल को कम मालूम पड़ा, जबकि विष्णु के दूत आए, अरे ये पहली बार जो नाम किया था उसी से उसके पाप जल गए, इसका है नाम का, पाप कहाँ, तुम देख रहे हो पाप, हम देख रहे हैं कि इसका पाप ही नहीं है, ये तो केवल वो पहले वो जो चल रहा था इसलिए ये कर रहा है। असल में पाप करने की प्रवृत्ति इसकी समाप्त हो गई है, किंतु फिर भी ये अभ्यास से चल रहा है, इसलिए ये इसका कोई भी क्रिया नहीं होगा, उसका बंधन नहीं होगा, इसलिए इसका इसको मुक्ति अपितेषु जो चारो भजते माम अनन्य अनन्य रूप से भजन करते हैं साधु रस मंतव्य, उसको साधु मानो। क्यों? बहुत जल्दी ही से वो उसका प्रकट होगा। अभी तक आत्मा तो निर्मल हो गई है, अब आत्मा के बाद में उसका मन भी निर्मल हो जाएगा और शरीर भी निर्मल हो जाएगा, ये पीछे देखने में आएगा। किंतु साधु लोग देख लेता है, अरे ये तो निर्मल हो चुका है, जली हुई रस्सी का ऐठन देकर कहते हैं इसमें तो कुछ नहीं तो जली हुई है, और वो देख रहा है कि नहीं ये तो ऐठ है इसमें, ऐसे ही। इसलिए उसमें मालूम नहीं पड़ता है शरीर में, किंतु जब कुछ होश आता है कुछ ज्ञान हो तो दिखता है कि इसके सब जल गए, इसके आत्मा का काम कर। अच्छे एक आदमी था, वो मरने मरने को हो गया, शरीर में बहुत दर्द था, फोड़े चारों तरफ में निकल आए थे और अप्राण जाए और बहुत चिल्ला रहा था। अस्पताल में गया, डॉक्टर ने देखा, देखा जा रही इसको तो ये रोग है, ठीक दवा दी, निश्चिंत हो गया। घर वाले रो रहे हैं, अभी छटपट छटपट कर रहा है, किंतु दवा दे दी है, वो देख रहा है जी ये काम कर रही है, ये घंटे के बाद में ये स्वस्थ हो जाएगा, और घर वाले रो रहे हैं। उसने कहा जी चिंता मत करो, शांत रहो, ये ठीक हो जाएंगे, अभी कुछ समय लगेगा किंतु दवा काम कर गई है, अब धीरे 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 धीरे, अभी छटपटा तो रहा है किंतु कष्ट अब धीरे धीरे कम होना हो गया है, अब उसमें श्वास भी लेना आरंभ कर दिया है, जो उसमें तीव्र ताप था वो भी धीरे धीरे कम हो गया है, ऊपर से अभी घाव दिखता है, कहे नहीं यार ये तो बच गया, ठीक है ले जाओ घर में ले जाओ, अब ये ठीक हो जाएगा, इसको यही दवा देना, होता है ना। तो इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में, एक महीने दो महीने चार महीने के बाद में देखते हैं कि वो ठीक हो गया। ऐसे ही भगवान का नाम लेने से क्रिया तो होती है उसी समय,
कर्म
है
कर्म का फल।
अब उसका नहीं, कर्म नहीं, वो बाहर में शरीर के ऊपर दिखता है पीछे से, पीछे से
आत्मा पर असर
करते, आत्मा पर उसी समय असर कर गया। उसमें देखो जो नाम में इतनी शक्ति है, जो अपने बेटे को बुलाने पर भी उस नाम ने काम किया, उसको समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया, किंतु वो जो नाम है वो ब्रह्म नाम, उस पर क्रिया किया। लिया तो नहीं था, यदि कोई अपराध नहीं होता है वह नाम मुक्ति तो नहीं देगा ना? किंतु जो बुरे कर्म है उसको, जो आवरण है उसको हटा देगा, और उससे उसको साधु संग होगा। अब उसका फल ये हुआ कि जो वो जो पुत्र पुत्र करता था, मरते समय स्मरण नहीं होना चाहिए था, किंतु स्मरण करा दिया भगवान का, भगवान का नहीं, वो अपने बेटे का ही स्मरण किया, किंतु भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया, और उसके प्रभाव से भगवान के दूत वहां पर आ गए और उस समय उसको ज्ञान दिया और रास्ता बताया जो ऐसे करो, और मृत्यु जो होने वाली थी वो रुक गई। ये सब उसी नाम का फल था, और शुद्ध नाम लेता तो देखो तो ब्रज की प्राप्ति हो जाती।
अगर किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम अगर कृष्ण है, और इनके जो जानने वाले या काम वाले लोग इनका नाम लेते हैं काम की वजह से,
इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में नियम है कि अपने बेटे का नाम राम कृष्ण जादव जादू या मुकुंदम माधव राम ये सब रखते, गोपाल ये सब रखते, इसीलिए यही कारण है कि उसका नवाभास होगा, नवाभास से उस पर क्रिया करेगी और फिर वो जरूर फल देगा कुछ न कुछ, इसी तरह से बढ़ेगा आगे, नहीं तो परमार्थ हो ही नहीं सकता। अपने कुत्ते का नाम भी रख दिया माधव तो भी काम करेगा वो। अपने अपने घर का नाम लिख दिया राम सदन, रखते हैं ना लोग राम सदन, कृष्ण सदन या सेवा कुंज या कुछ ऐसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? जैसे तैसे वहां पर आएंगे जो कोई नहीं जानता वो भी देखेगा और बस सुकृति कुछ हो जाएगी, पुण्य हो जाएगा। विदेशों में नहीं है,
है?
बस उसी से हो जाएगा जरूर, कुछ ना कुछ जरूर होगा। देख लेना उस व्यक्ति से बात करके, जो नाम लिखा जो किया ना कंपनी का रामदा लिखा है, जरूर देखो अंत में वो कुछ ना कुछ उसमें आएगा निश्चित। हाँ जरूर, सभी लोग थोड़े देखते हैं, जगत में कितने देखते हैं, कितने लोग रेयर हैं, बहुत से देख करके भी कुछ नहीं देखते, देखते हैं चले जाते हैं।
तो पति पत्नी आपस में हानि नहीं करके बुलाते हैं तो इनका नाम भी कुछ चेंज कर देना चाहिए। पत्नी अपने हस्बैंड को मान लो विष्णुदास और रामदास ऐसे
ना, वो सब जरूरत नहीं है। पति का नाम राम भी है तो राम नाम, राम नाम ऐसे हरे कृष्ण में करेंगी, किंतु राम उनके उनके नाम से नहीं बुलाएंगे। हाँ ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कुछ आपके ऊपर देखो, और मंत्र तो मन ही मन करना चाहिए, जितने भी मंत्र हैं मन से करो, इसलिए उसका नाम है मंत्र, मन से। और ये महामंत्र है, मन में करेगी तभी फल होगा, किंतु उससे अधिक फल होगा यदि अपना कर सुन सको अपना, और उससे अधिक फल होगा जो दूसरे भी सुन सके, तुम भी सुन सको। हरे कृष्ण कर रहे हैं, सबके कान में जा रहा है, पौधों के घासों के अंदर भी जाएगा, उनका भी कल्याण होगा। और जोर से करेंगे हरे कृष्ण तो तुम्हारे मन में दूसरा कोई चिंता नहीं आएगी। अब मन ही मन में करो, बेटा कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये ऐसे क्या हुआ वैसे, इसलिए जोर से करने से ही उस पर कंट्रोल हो जाता है, और नहीं तो मन पर कंट्रोल नहीं है। तो जिसका मन कंट्रोल हो गया है वो तो मन में कर सकते हैं, और प्रेम से करने से हा राधे हा कृष्ण हा हरे कृष्ण अपने आप आसक्त हो जाएगा, चित्त को कंट्रोल कर देगा। और लाखों जो कुत्ते पशु पक्षी जो सुनेंगे सब में वो क्रिया करेगा। पढ़ने के लिए पुस्तक की जरूरत है और कागज कलम की कि नहीं, यदि उसके लिए वो जरूरत है तो क्यों नहीं माला पर, न माला रहने से कंट्रोल आदमी नहीं कर सकता। हाँ तो उस समय मन में करो जरूर, हाँ उस समय मन को ठीक रखना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, उस समय ठीक से कंट्रोल से, और कुछ समय निकालो सवेरे का शाम को जिसने चित्त को एकदम, उस समय संसार को पता नहीं ये कहाँ है। आपको जब ही फुर्सत हो, हरिनाम तो सब समय कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते स्नान से पहले पीछे खाने के बाद भी सोने के पहले सोते सोते पलंग पर भी रहते ये कर सकते हैं, किंतु खूब गंभीर रूप में चिंतन करते हुए स्मरण करते हुए वो जो होगा वो कहीं बैठ करके सीधे तन करके बैठेंगे, आसन से बैठेंगे, हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, तंद्रा आलस्य नहीं आए तब होगा। आप ऐसे बैठ करके हरे कृष्ण करते हैं, ऐसे पैर को रख करके ऐसे बेंच पर बैठ करके कर रहे हैं, टहलते हुए कर रहे हैं, और फिर एक जगह सीधी जगह पर बैठ करके ऐसे, ये सब ना रहे, ये भी गड़बड़ का है, जैसे नीचे आसन पर बैठ करके सीधे तन करके समाधिस्थ किया, मन को कृष्ण में लगाया, हरे कृष्ण कृष्ण, इसका देखेंगे ये कैसा होता है, और पैर को ऐसा झुला करके हरे कृष्ण कैसे हैं, हरे कृष्ण अच्छे तो हो, हरे कृष्ण, या टहल रहे हैं इधर देख रहे हैं प्राकृतिक सीनरी, वाह झरना बड़ा सुंदर झर रहा है, और ये ऐसा सुंदर बनाया है यहाँ क्या हो? उसके चारों तरफ रास्ता बना है, उसमें चारों तरफ में टहलने के लिए रास्ता है, और पानी कैसे झरझर आ रहा, उसमें एक टायर है इधर से चलता है उधर आता है, और उसमें कुछ दवाई है जो उसमें से दे दिया गया है, वो रोटेशन करता है जो गंदा, हम भी जाएंगे ऐसा ही बनाएंगे, और हरे कृष्ण देख रहे हैं, मन तो है झरने में, और तो फिर इसलिए चित्त को एकाग्र करके सीधी तरह से बैठ करके तन करके बैठो और स्मरण करो, वैसे जैसे तैसे वो है ठीक है, किंतु कुछ ऐसा रखो, धीरे धीरे अभ्यास करते चलो। हमारे ऋषि महर्षि लोग एक जगह एक आश्रम पर बैठ गए और लाखों वर्ष तक बैठ गए, दीमक लग गया, सब दीमक खा गया, सब कुछ हाड़ में प्राण किसी प्रकार से थोड़ा सा है, ब्रह्मा जी आए कमंडल छिड़का तेजमय शरीर हो गया, उस समय आत्मा हड्डियों में वास करती, आजकल अन्न में प्राण है, अन्नगत प्राण, अन्न नहीं खाओ मर जाओगे, आप पहले 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष कुछ नहीं खाओ, हवा भी नहीं पारो, हड्डी में प्राण रहता है, आजकल एक दिन नहीं खाओ दो दिन नहीं खाओ देखो जब दम निकल जाएगा।
टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, जैसे 8 बजे पूजा करना है और स्मरण करना है तो 8 से 8:15 भी हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम,
जिस समय वातावरण शांत प्रशांत रहे, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय इसके लिए बतलाया गया, उस समय में 1 मिनट करेंगे तो और दिन में जो 10 घंटा करेंगे बराबर होगा, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का है सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट से लेकर के सूर्य उदय तक, तो यही सब पूर्व जन्म का और इस जन्म का ये सब कुछ बाधाएं हैं, भजन करते करते ये अपने आप ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ऐसी स्थितियों में जैसा समय निकाल करके करना है, बच्चों को भी देखना जरूरी है, कितना फल होता है ये तो अभी वजन नहीं किया गया, तुम अपने ऊपर में उसको निर्भर करो, और दिन करती है 16 तो उस दिन हम 32 करेंगे, ऐसा करो, जो 32 करता है वो कहेगा जी 64 कर लें, जो 64 करता है वो कहेगा जी हम आज 64 × 2 = 120, जो 2 करता है वो कहेगा जी हम आज 3 करेंगे, और वो ऐसे बढ़ेगा धीरे धीरे, अपने अपने सामर्थ्य के ऊपर में है। ऐसा होता है जी, अभी चित्त अभी स्थिर नहीं है, कभी पढ़ने में मन लगता है कभी नहीं लगता है, कभी घर के काम में मन लगता है कभी नहीं मनता है, पति ने कहा जो वाह वाह आज तो बड़ी सुंदर रसोई तुमने बनाई, बड़ा मजा आ गया, बस चित्त प्रसन्न हो गया खूब और काम में लगे, कहे बेकार की भोगस औरत जानती नहीं है, ऐसा कि मनुष्य खाता है न पशु खाता है, बस मन खराब हो गया, 1 मिनट में सब हो गया ना करा,
भगवान का नाम लेने बैठकर नींद आ जाती है,
पहली
पागल पढ़ते हैं तो नींद आती है, माला हाथ में लेते तो नींद आती है,
किंतु हमको तो नहीं आती कभी, हमको बल्कि नींद आती रही, हमको नींद आ रही हो, नींद आ रही हो सोचते हैं जी अब नहीं लेना चाहिए, नींद नहीं सोना चाहिए, हरि नाम की माला करते हैं बस हमारी सारी रात भर बैठे रह जाते, इसलिए आप जो कह रहे हैं आपकी अवस्था के लिए, वो सबके लिए नहीं ना, जिसको रुचि नहीं है उसको आय नहीं जाएगी,
हमको रुचि नहीं,
जिस जिस काम में रुचि रहती है उस काम में नींद नहीं है, अब उसको रुचि हो गई है उसमें तरह तरह की आनंदमयी लीलाओं का उसमें अनुसरण कर रहा है, याद आ रही है स्मरण कर, बस उसको नींद कहाँ से आएगी,
और सपने ज्यादा आते हैं,
वो तो अभी मन चंचल है ना, जैसा देखा है सुना उसी पर आपकी क्रिया करता है मन, वैसा ही सो, कभी कभी आपने आदमी देखा ना, और कभी कभी ऐसा होगा जिसको कभी नहीं देखा, आपने देखा ये सांप हमको खदेड़ रहा, मैं आकाश में उड़ रहा हूँ और कुएं में गिरता हुआ चला जा रहा, कुएं का शेष ही नहीं है, ये सब वायु रोग है।
गीता में बोला है कि वायु रोग को कठिन कर,
बहुत सी चीजें हैं, बहु कर्मों का फल फल है, किसी किसी के स्वप्न सत्य भी होते हैं, समय के अनुसार के होते हैं, किसी का स्वप्न भगवान या देवता देते हैं, किसी का स्वप्न अपने पूर्व जन्मों के अनुसार में, किसी का बेकार का होता है।
हमारे बेकार के
बस अब अधिक नहीं, अब पहले दक्षिणा देकर के कोई पूछो, $100 यहाँ रखो और बात करो, तब बात करो, ऐसे नहीं, हमारा भी तो एक एक बात का $100 दे, ऐसे नहीं, तब तब समझेंगे, अधिक नहीं, बस एक बात का पहले रखो तो। एक बार ऐसी हुई, याज्ञवल्क्य से लोग प्रश्न करने लगे, याज्ञवल्क्य जनक जी के दरबार, वो प्रश्न था जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी हो वो इन लाखों गायों को अपने घर ले जाए, तो जो है वो ले जाए। उन्होंने अपने चेले को कहा, अपने छात्र को, जो बेटे ये गायों को हाँक करके हमारे आश्रम में ले जाओ। तो लोगों ने कहा जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो और तब ले जाओ। कहा कहिए, आप ब्रह्मज्ञानी हैं? तो नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हूँ, किंतु ब्रह्मज्ञानियों के चरण की धूली हमारे सिर पर रहे, बहुत नम्रता से उत्तर दिया। फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो कीजिए, किंतु देखो उल्टा सीधा सीधा प्रश्न होना चाहिए और उचित प्रश्न हो, यदि टेढ़ा मेढ़ा इधर का प्रश्न है तुम्हारा सिर उड़ जाएगा, ये समझ जाओ, समझ रहे हैं ना, यदि तुमने बेकार का प्रश्न किया तो सिर आप उड़ जाएगा तुम्हारा, ये समझ लो। अरे तब देखा जाए, अरे सचमुच नहीं है ब्रह्म, पर कोई उल्टा सीधा प्रश्न नहीं किया। बस एक प्रश्न गार्गी जी ने किया, जो वा एक तदर अक्षरम गार्गी विदित्वा समान लोका प्रति सब ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? तो ब्रह्म को जानने वाला, जो जगत से कैसे इस भगवान को स्मरण करके इस जगत से पवित्र होकर के चला जाता है आत्मा का ज्ञान लेकर के, वो तो ब्राह्मण है। अब बाकी सब लोग शूद्र हैं, जो भगवान को नहीं जान करके आत्मा को नहीं जान करके इस जगत से चले जाते हैं वो सब शूद्र हैं। इसके बाद में सभा शांत हो गई, वो गाय को हाँक कर लेकर के, इसलिए उचित प्रश्न करेंगे।
उचित प्रश्न गोपियों को रेफरेंस में अपत्य का क्या मतलब?
अपत्य मैंने होता है, अपत्य मैंने तो होता है बेटा बेटी, किंतु मान लिया कि ये है, इसकी एक देवरानी है, देवरानी समझती है, उसका बेटा है और उसके बेटे को ही अपना बेटा समझती है, तो अपत्य होगा कि नहीं? ऐसे गोपियों के लिए, जिन गोपियों को संतान है वो कृष्ण के रास में नहीं जा सकती, उनका रास में जाना नहीं होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम तो होगा किंतु गोपियों का कृष्ण के साथ में जाकर के रास इत्यादि करना उनके लिए संभव पर नहीं है। इसलिए जो गोपियों को संतान नहीं थी वो सब रास में गई, राधा ललिता विशाखा इनको कोई भी संतान नहीं है, पतियों से उनका कोई संपर्क ही नहीं है, जो संसार में होता है ये नहीं है उनकी, वो तो शुद्ध आत्मा है, उनमें ये सब जो कलुषित भावना जो पुरुष स्त्री में होता है या जैसा कहो पुत्र संतान के लिए, वो उनमें नहीं है, है ही नहीं है, बहुत ऊपर है, इसलिए उनको पुत्र नहीं होता। तो जिनको पुत्र हुआ इसका मतलब अपने पतियों के साथ में संपर्क था, ऐसे व्यक्ति लोग कृष्ण के रास में नहीं जा सकती। तो जिनके लिए लिखा है जिसे अपत्य पुत्र और पति को छोड़ करके कृष्ण के रास में गई, उनके लिए इसको समझना पड़ेगा कि अपने देवरानी के या उसकी ननद आई थी उसके लड़के हैं, उनका पोलन पोषण उनको दूध पिला रही थी गोदी में लेकर के उनको भी छोड़ करके गई, ये आपत्ति का। ये आपका क्या क्या प्रश्न है? अब सोच करके नहीं,
फीलिंग्स लागणी कैसे हो सकती है? फीलिंग्स मूर्ता कैसे
लागणी गुजराती में चार कहते हैं
मतलब आसक्ति मोह जिसको कहते हैं
आसक्ति नहीं आसक्त नहीं आसक्ति कैसे हो सकता मोह कैसे मूर्ता से कैसे बाहर निकला मूर्ता
मूड मूड मोह
इग्नोर नो मूड हार्ट हृदय इन द हार्ट हार्ड हार्ट आउटर फीलिंग
बाय गुड एडवांस एसोसिएशन वी कैन गो आउट ऑफ दिस बाय गुड एसोसिएशन अब जैसा हम लोगों का हो रहा है ऐसे एसोसिएशन से वो सब मोह इत्यादि दूर हो जाए मोह माने अज्ञान एक तरह से जैसे अभी किसी का पति मर गया और उसके लिए दिन रात रोए सब काम पागल हो गई ये मोह है आत्मा अजर अमर है रोने से क्या होगा वो तो आ तो जाएगा नहीं ये सत्संग से जाए
मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि ऐसा फीलिंग कैसे हो ज्यादा फीलिंग
बस सत्संग से होगा जिसके अंदर में ये फीलिंग है ऐसे व्यक्तियों का संग करें
एक्सप्रेशन कम हो जाता है
क्या समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं वो पिघलेगा उसी से सत्संग से पिघलेगा पिघल जाएगा ऐसे अच्छे व्यक्तियों का संग हो जिसके उनके आचरण और कथा का प्रभाव पड़ेगा उनके रहन सहन का प्रभाव एक वेश्या थी बहुत बदमाश छठी हुई और हरिदास ठाकुर एक थे महात्मा उनको पतन करने के लिए राजा से किसी से उसका अनुबंध हुआ जैसे हम तुमको आधा राज्य दे देंगे यदि उसको तुम गिरा दिया और उसका काम ही था यही